ओम शांति। नमाज शाम के समय इतना शक्तिशाली वायुमंडल जिसमें आत्मा सहज अपने तीनों लोकों का सैर कर सकती है, शांति वन में तपस्या के वायुमंडल के बीच में आप सभी पहुंचे हो। सबसे पहले बाबा के इस बेहद घर में सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले भाई और बहनों को बहुत दिल से स्वागत है, बधाई है, क्योंकि ऐसा सुंदर चांस, सेवा तो एक निमित्त बहाना ही है, लेकिन स्वस्थिति बनाने का, तपस्या करने का, यहाँ के शक्तिशाली प्रकंपन से आत्मा को सर्व शक्तियों से श्रृंगारने का एक बहुत सुंदर अवसर। आप सब 10-12 दिन यहाँ रह करके लेंगे, बाबा से मिलन मनाएंगे, बड़े भाई बहनों की, दादियों की क्लासेज भी सुनेंगे और सेवा करके दुआओं का स्टॉक भी जमा करेंगे। तो इतना बड़ा भाग्य, संगम पर हम भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तो आप सभी जो यहाँ आज पधारे हैं, वो ऐसा भाग्यशाली अपने आप को समझते हो? हाथ हिलाओ जो समझते हैं कि हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। कल बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया था मुरली के अंदर। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। याद है किसको, क्यों कहा था? जिसको याद है वो हाथ उठाओ। अच्छा, इतने लोगों को याद है। याद है कल की बात? बाबा ने कहा कि सारी दुनिया मुसीबतों में फंसी हुई है, एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक दुख दर्द बढ़ता ही जा रहा है, और मैंने अपने बच्चों को उस मुसीबतों की दुनिया से निकाल लिया। तो बाबा के बच्चों के सामने कोई मुसीबत है? यहाँ तो कोई नहीं है, घर में तो होगी ना, लौकिक में तो कोई ना कोई मुसीबत होती ही है, कभी परिवार में कोई समस्या आती है, कभी सरकार से समस्या आती है, कभी प्रकृति से आ जाती है, और कभी शरीर से भी आ जाती है, कभी अपने पुराने स्वभाव और संस्कार से आ जाती है। तो हर समय मुसीबतों का एक पहाड़ दिखाई देता है कलयुग के अंदर, और बाबा के बच्चे इतने भाग्यशाली हैं जो उन मुसीबतों को पार करना, उनको क्रॉस करना सहज जान गए हैं। कोई बहुत बड़ा पहाड़ सामने आए, उसको कैसे पार किया जाए, उसकी विधि बाबा ने सिखा दी। क्या विधि है? पहाड़ को तोड़ने नहीं लगना, क्यों आया, कैसे आया। पहाड़ को तोड़ेंगे तो थक जाएंगे, समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़नी ही हैं। हर क्षेत्र में पापों की अति होनी है, क्योंकि अति के बिना अंत नहीं और अंत के बिना आदि नहीं, ऐसा है ना। अगर पापों की अति न हो तो पाप का घड़ा भरेगा नहीं, अगर मुसीबतों की अति न हो तो ये मुसीबतों का अंत नहीं होगा, इसलिए ये नहीं कहना कि ऐसी मुसीबतें हमारे सामने भी क्यों, लेकिन उन्हें क्रॉस करना, उन्हें पार कर लेना और उसमें अपनी अच्छी से अच्छी स्थिति बना करके रखना और दूसरों को भी मदद कर देना कैसे पार करो। पहले बाबा कहते थे बच्चे जंप दे दो, अब जंप भी कितना हाई जंप होगा, बहुत बड़ा पहाड़ हो तो कैसे जंप देंगे। अभी कहता है बच्चे उड़ती कला में उड़ चलो, उड़ना सीखो। तो उड़ने के पंख तो सबके पास है ना, नहीं है? हैं, है माताओं के पास? बाबा ने उड़ने के पंख दिए हैं। बच्चे कोई भी बात आ जाए तो मुझे एक सेकंड में कहो मेरा बाबा, दिल से कहो, और मेरे पास वतन में आ जाओ तो ये मुसीबतें बहुत छोटी छोटी, जैसे कोई ऊंचे चोटी पर बैठ जाओ या प्लेन में उड़ो तो नीचे की चीजें कैसे दिखाई देती हैं, खिलौने जैसे छोटी छोटी, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े तालाब, बहुत छोटा छोटा सा दिखाई देता है। तो अगर हम बाबा के बच्चे सिर्फ उड़ना सीख जाएं, सेकंड में इस देह से डिटैच होना सीख जाएं, तीनों लोकों की यात्रा करना सीख जाएं, तो समस्याएं नीचे रह जाएंगी और हम ऊपर हो जाएंगे, उनको सहज ही पार कर लेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमको उन्हें पार करने की विधि मैंने सिखा दी है। ये सब नथिंग न्यू, ये सब समाप्त हुआ पड़ा है, खत्म होने वाला है। अगर कोई कड़ा हिसाब किताब है तो धैर्यता के साथ, अधैर्य न हो जाओ, हाय हाय नहीं करो, हाय क्या करूं, इतनी बड़ी परीक्षा आ गई, इतनी बड़ी समस्या आ गई, ऐसी मुसीबत आ गई मेरे सामने, मैंने तो समझा ही नहीं था कि बाबा का बनने के बाद भी ऐसी मुसीबत आएगी। कईयों के सामने लौकिक में बहुत बड़े बड़े कर्म बंधन आ जाते हैं, ज्ञान मार्ग में वो चलना चाहते हैं उनके आगे रोड़े आते हैं। तो लोग कहते हैं जब तक तुमने भक्ति की तब तक तो तुम बहुत सुखी थे, अब तुम ज्ञान मार्ग में आ गए, बाबा के भगवान को भगवान मान करके ज्ञान में चलने लगे तो तुम्हारे आगे ये मुसीबत आई, ये मुसीबत आई, नई नई मुसीबतें आने लगती हैं। कई आत्माएं इसमें विचलित घबरा जाती हैं, क्या करूं, कैसे करूं, व्यर्थ के तूफान आते हैं, बाबा में निश्चय डगमगाने लगता है। अभी अभी कहेंगे मेरा बाबा, और अभी अभी कोई थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा बबूत देने वाला मिल जाए, कहे कि नहीं नहीं ऐसे आओ, यहाँ आओ हमारे पास, हम तुम्हें सेकंड में मुक्त कर देंगे, सेकंड में ठीक कर देंगे, तुम्हारा ये विघ्न टाल देंगे, तो कहेंगे चलो बाबा तो है ही हमारा, लेकिन इसको भी ट्रायल कर लेते हैं, ऐसे ना। और अगर ऐसा किया तो दो नाव में पांव रखने वालों का क्या हाल होता है? अगर कोई दो नाव में पांव रख करके पार होना चाहे, पार हो पाएगा? विचार करना, क्योंकि दो नावें हैं, एक है भक्ति की नाव और एक है ज्ञान की नाव। हम सब ने अभी भक्ति की नाव से उतर करके ज्ञान की नाव में अपने पांव रख लिए, ऐसा है ना? कह माताओं के पास अभी भी कुछ तो भक्ति कर लेनी चाहिए, नहीं तो कोई नाराज हो जाएगा, गुरु का मंत्र कुछ तो जप लेना चाहिए, नहीं गुरु जी नाराज हो जाएंगे, कुछ आशीर्वाद दें या श्राप न दे दें। कभी कभी थोड़ा सा अंदर संकल्प रहता है संशय का, भगवान में संपूर्ण निश्चय नहीं, विश्वास नहीं, तो समय पर उसकी मदद भी नहीं मिलती। अगर संपूर्ण विश्वास हो, संपूर्ण निश्चय हो, तो बाबा कहता है मैं तो बच्चों के लिए ही हूँ, बंधा हुआ हूँ, सच्चे दिल से कहो मेरा बाबा, सच्चे दिल से याद करो। कल मेरे पास एक विदेश की बहन आई, मैं एक अनुभव सुनाता हूँ आपको, आप सबने बाबा की मुरलियों से सुना होगा। कि अफ्रीका देश में बाबा के बच्चों ने बहुत मेहनत की है और अफ्रीका खंड का कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जहां पर बाबा के बच्चे न पहुंचे हों। इस साल हर देश में बाबा का झंडा लहराया है, छोटे बड़े शहरों में भी पहुंचे हैं। तो एक बहन एक सेवा केंद्र पर जब नए नए स्थान पर गई तो उसने समाचार सुनाया कि मैं अकेली थी और वहां पर केवल उस देश में ही 100 इंडियन थे, 100 इंडियन और सब कालों का राज्य, और फ्रेंच होने के कारण भाषा की भी प्रॉब्लम और साथ साथ किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं है, और पानी जो है वो शराब से भी महंगा है। अगर शराब 300 रुपए की बोतल है तो पानी 500 रुपए की बोतल मिलती है, और वो पानी भी पेट्रोल मिक्स होता है, पीने जैसा भी नहीं होता है। कहने लगी $1 में 3 मिर्ची मिलती है, अगर मिर्ची किसी चीज में डालनी हो तो $1 दो तो 3 मिर्ची मिलती है। एक गैबेज जो गोभी की छोटी सी गैबेज पत्ता गोभी की आती है वो पत्ता गोभी $1 की होती है, क्या खाएं क्या ना खाएं, इतनी महंगाई। और कुछ मिलता ही नहीं है, सब वहां पर मांस मदिरा खाते हैं, शराब पीते हैं, मौज में रहते हैं। अब ऐसे देश में मुझे सेवा करने का चांस मिला, बाबा ने मुझे भेज दिया। मैं गई और वहां जाकर के मुझे इतना जबरदस्त पानी ठीक नहीं मिला, भोजन ठीक नहीं मिला, बीमार पड़ गई और इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई जो बिस्तर से उठना ही मुश्किल हो गया। अकेली थी, किसको सुनाऊं, बहनें तो कोई क्लास में नहीं आती वहां, जिनके नए नए भाइयों के संपर्क में आई तो भाइयों को बता भी नहीं सकती मुझे क्या बीमारी। कहती 2 दिन में मेरे सारे हाथ पैर फूलने लगे, सूज गए सारे पैर, और न खाना न पीना न कोई पूछने वाला, अभी क्या करूं मैं, फोन लगाऊं तो फोन नहीं लगे, दीदी को फोन करूं तो दीदी के फोन कट, अब तो बाबा ही मेरा सहारा रह गया। तो कहती मैंने कहा बाबा मैं अभी आपको क्या भोग खिलाऊं, मैं ही नहीं खा रही हूं। फिर भी मैंने हिम्मत की और थोड़ी सी खिचड़ी बनाई, चावल वगैरह ले जाते हैं साथ में, हर देश में तो नहीं मिलता। तो बोलने लगी कि मैंने जब वो खिचड़ी बना के बाबा के आगे रखी तो मेरे अंदर आंसू आने लगे, रोने लगे, और मैंने कहा बाबा कुछ है ही नहीं, मैं क्या भोग लगाऊं आपको, यही है। और बाबा बच्ची की पुकार सुन करके कहती पहली बार साकार बाबा मेरे सामने आ गया, इतने दिल की आवाज थी, दिल का प्यार था। और बाबा बोले बच्ची घबराओ नहीं, मैं तो तेरे साथ हूं ना, कोई नहीं है तो क्या हट जाए, चलो अच्छा बिस्तर पर चलो मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। ब्रह्मा बाबा को उसने साकार में देखा और विश्वास नहीं, वो कहे कि मैं ट्रांस में गई हूं या बाबा साकार में आ गया, मैं बार बार देखूं ये कौन है कैसा है, ऐसा नहीं कोई दूसरा है, लेकिन बाबा उसके सामने और मुस्कुरा रहा है। 3 मिनट के बाद बाबा गुम हो गया, तो उसको लगा सचमुच बाबा आया मेरे सामने, और बाबा मुझे कह रहा बिस्तर पर चलो बच्ची मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो वो जब बिस्तर पर लेटी तो लेटते ही नींद आ गई, और जब उठी तो उसके पैर की सूजन वगैरह सब उतर गई अपने आप, दो कोई दवाई नहीं ली। तो उसको विश्वास हो गया कि बाबा मेरे साथ है, वो बस निश्चय और नशा जो संकल्प में आया, तो उसने कहा बाबा मुझे मात पिता की अनुभूति कराओ, आज मेरे पास कोई नहीं है। बस उसी अनुभव में बाबा से बातें करती रही करती रही करती रही, तो शिव बाबा की लाइट ऊपर से दिखाई दी और ब्रह्मा बाबा की गोद में उसका सिर दिखाई दिया कि मेरा गोद है, ब्रह्मा बाबा की गोद में सिर है और बाबा की किरणें ऊपर से लाइट दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं। कहती मेरी सारी बीमारी भाग गई और इतनी हिम्मत आ गई कि कुछ भी हो जाए मुझे शहर अभी छोड़ना नहीं है। तो बाबा कैसे बच्चों को मदद करता है, लेकिन किस आधार से करता है, संपूर्ण विश्वास संपूर्ण निश्चय। जब एक ही सहारा नजर आता, कोई देहधारी सहारा नहीं, इतना अंदर से दृढ़ता है संकल्प की और बाबा में विश्वास है, इतना प्यार है, तो बाबा कहता है मैं तो बच्चों के लिए हर परिस्थिति में बंधा हुआ हूँ। तो आप सभी किसी भी सेवा के क्षेत्र में कहाँ भी रहते हो, कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो बाबा कहता है बच्चे मुसीबतों की तो दुनिया है ही, समस्याओं की दुनिया है ही, कहीं पर कोई भटकती हुई आत्माएं अटैक कर रही हैं, कहीं पर कोई संस्कार प्रबल हैं, इंसान के क्रोध का संस्कार भी ऐसा है जैसे कोई इविल सोल प्रवेश हो जाती है, गुस्सा आए किसी के अंदर तोड़ फोड़ कर देता है, मारपीट कर देता है, गाली गलौज करता है, बहुत तंग करता है, परेशान करता है। अब ऐसे समय पर योग लगे मेरा। बाबा तो आज कह रहे थे मुरली के अंदर, बच्चे अगर कोई दुख देता है तो तुम नहीं लो, लेकिन वो इतना दे रहा है तो मैं क्या करूं, कुछ तो दुख होगा ना कि नहीं होगा। बाबा तो कह ही दिया है, इतनी ऊंची बातें हमको सुना देता है, बच्चे दुख दे तो दुख नहीं लो। लेते हो कि नहीं? कभी कभी तो हो जाता है कि नहीं होता है? नहीं, अगर मान लो ऊपर से अंदर से बोलेंगे तो अंदर अंदर दुखी होकर के खुशी गायब हो जाएगी, नशा नहीं रहेगा, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, भगवान मेरा साथी है, भूल जाएगा। कोई के आगे पेपर आता है तो उनका अनुभव पूछो, कितना समय वो खुशी और नशा रहता है, कैसा योग लगता है, कितना समय व्यर्थ जाता है। और बाबा कहता बच्चे व्यर्थ को बचाओ, क्योंकि हमारी जो युद्ध है वो व्यर्थ से है। हर एक ब्राह्मण आत्मा की कंप्लेन है तो केवल यही है कि मैं बाबा की याद में बैठती हूँ, बैठता हूँ, मुझे व्यर्थ संकल्प आते, एक रस एकाग्रता की स्थिति नहीं बनती। निरंतर एक बाबा में बुद्धि टिक जाए, कितना समय टिकती है? हर एक पूछ सकता अपने आप से कि मेरी बुद्धि कितना समय एकाग्र होती है, आधा घंटा चलो हम बैठे, सफल हुआ पूरा टाइम, या पांच मिनट दस मिनट योग लगा और बीस मिनट बुद्धि इधर उधर, यहाँ गई वहां गई, इधर के विचारों में, क्या अनुभव है? अब इस बुद्धि पर चाहिए पहरा, क्योंकि मन और बुद्धि जिसको कहते हैं बहुत फास्ट है, इसकी गति बहुत तेज रफ्तार है। और अगर कोई आत्मा बार बार कोई भूले करे, मर्यादाओं का उल्लंघन करे, श्रीमत का उल्लंघन करे, बाबा का कहना न माने, कोई न कोई कारण से किसी न किसी संस्कार के, किसी न किसी बुराई के वशीभूत होकर के अगर कुछ विकर्म कर ले, उल्टा कर्म कर ले, गलतियां कर ले, तो ऐसी आत्मा का योग तो लगेगा ही नहीं। बैठेगा बुद्धि में वही बातें याद आएंगी, किसी को दुख दिया होगा तो वही सामने आएगा, कोई कोई भी भूल हुई होगी छोटी मोटी, वही बाबा वैसे नहीं याद आएगी, योग में बैठेंगे वही याद आना लगेगी। ऐसा ना माताएं, क्या अनुभव है, होता है ना ऐसे? अब इन सब के लिए हम क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाबा के घर में यहाँ आए हो, इस वायुमंडल का लाभ लेना, यहाँ व्यर्थ का नाम निशान नहीं है। और जब सब एक जैसी समर्थ आत्माएं होती हैं, अच्छे संकल्प वाली होती हैं, शुभ संकल्प से संपन्न होती हैं, तो शुभ संकल्प जब बहुत आत्माओं का इकट्ठा होता है तो उन शुभ संकल्पों का एक घेराव बनता है, जिसको कहते हैं वायुमंडल बनता है। उस घेराव के अंदर, उस वायुमंडल के अंदर कोई कमजोर आत्मा भी अगर आ जाए तो उसका योग सहज लग जाएगा। कोई ऐसे संस्कार वाला भी आ जाए जिसके बहुत बुद्धि भटकती हो, मन एकाग्र न होता हो, लेकिन ऐसे वायुमंडल में बाबा कहता आना चाहिए, पर बैठना चाहिए। और जब आते हो बैठते हो तो एक बार जो अच्छा अनुभव हो गया, वायुमंडल से एक बार शक्ति मिली और अच्छे अनुभव हो गए, तो उस वायुमंडल की शक्ति को बार बार रिवाइज करो जब बैठो योग में, तो उसको याद करो। इसलिए बाबा कहता वहां बैठ करके, अपने स्थान पर बैठ करके भी इस वायुमंडल से शक्ति प्राप्त करो, जो आपने देखा सुना अनुभव किया, एक बार अच्छा अनुभव हो गया उसको लिख डालो, अपनी डायरी के अंदर लिख लो, बुद्धि की डायरी में नोट कर दो, और फिर बार बार जब बैठो तो उसको याद करो, रिवाइज करो। तो ये बहुत बड़ी मदद मिलेगी, जब बैठेंगे तो सहज रीति से बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और एकाग्रता के अभ्यास के बिना अच्छे अनुभव नहीं हो सकते। अगर आप बैठो और घड़ी घड़ी उठो बैठो, जैसे बाबा के कमरे में आ जाएंगे ना, छोटा कमरा है और 10-12 हजार लोग आते हैं, तो बैठते हैं उठते हैं बैठते हैं उठते हैं, तो योग में मजा ही नहीं आता। इसलिए सिर्फ बाबा के कमरे में योग करके आएंगे तो मजा नहीं आएगा। संगठन जहां है, जैसे यहां पर बैठे हैं 2000-1500 भाई बहने, तो इस संगठन के बीच में सबके वायुमंडल में अगर शक्ति है, एक जैसे शुभ संकल्प हैं, तो वो शक्तिशाली वायुमंडल मुझे मदद करेगा। और उस शक्तिशाली वायुमंडल को बनाने के लिए व्यर्थ पर कंट्रोल चाहिए। इस बार बाबा ने हम सबको एक काम दिया, खास मधुबन वालों को भी बोला और जो भी सेवा केंद्र हैं, हर स्थान के वायुमंडल को कैसे चार्ज किया जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, उसके लिए बाबा ने कहा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करो, जो व्यर्थ है उसको समर्थ में बदल दो, बुराई को अच्छाई में बदलना सीखो, क्योंकि व्यर्थ को ऐसे सहज समाप्त नहीं किया जा सकता। जब बहुत व्यर्थ चीजें होती, जैसे यहां पर आजकल की दुनिया के अंदर वेस्टेज को भी बेस्ट बना देते हैं साइंस की शक्ति से, कहीं कीचड़ा पड़ा होता है तो उस कीचड़े को खाद का रूप दे देते, उसको ऐसे जगह पर डाल देते हैं, गाड़ देते हैं जमीन के अंदर, जो खाद बन जाए और उस खाद से फिर अच्छी अच्छी फसल उगा लेते। खाद तो बदबू वाली है, गंदी है, गंदे चीज से, कीचड़े से बनी, लेकिन परिवर्तन करके उससे फूल उगाते, सुगंधित चीज निकाल लेते। तो दुनिया में तो व्यर्थ की खाद है, व्यर्थ का कीचड़ा बहुत है, हमारे अंदर भी है, लेकिन हम सब उसको, व्यर्थ को अच्छे संकल्पों से, पॉजिटिव विचारधारा से चेंज करें। बाबा ने इसलिए हम सबको इतनी अच्छी अच्छी मुरलियां, इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाई, वरदान, स्लोगन, क्लासेज, जो हम सबकी बुद्धि के लिए बहुत अच्छा भोजन मिल रहा, फूड मिल रहा है, अगर इस भोजन को हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं, व्यर्थ कीचड़े से भी हम अच्छी अच्छी चीजें उगा सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे आवश्यक है कि व्यर्थ के बहाव में हम बहे नहीं। बहाव तो बहुत तेज है, जैसे नदी और सागर में अगर बहाव हो, बहुत तेज पानी बह रहा और उसमें कोई फंस जाए तो क्या होगा? नदी बहुत तेज आपके गांव में से बह रही हो और कोई तैरना न जानता हो, उसके अंदर चला जाए तो बह जाएगा उसके साथ। तो बाबा भी कहता है इस समय संसार के अंदर व्यर्थ संकल्पों का फोर्स, बहाव बहुत तीव्र गति का है, और अगर हमारे अंदर भी वो बहाव है और हम उसमें बह गए तो नींद फिट जाएगी, रात के अंदर सोएंगे बिस्तर पर, पूरी पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी, न बाबा याद आएगा, न ज्ञान की कोई पॉइंट याद आएगी, न बिंदी लगेगी। तो बाबा कहता है बच्चे उस बहाव को रोको, स्टॉप करो, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना सीखो, और फुल स्टॉप लगाने के लिए बिंदु बाबा, बिंदु मैं, इस बिंदु स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाओ। और उसका सबसे अच्छा साधन है भ्रकुटी आसन पर, भ्रकुटी के तख्त पर मैं आत्मा रहती हूं। अभ्यास करके देखना, जब बहुत बहाव हो, बहुत इधर उधर के संकल्प आ रहे हो, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, स्टॉप लगाना चाहते हैं, तो बार बार स्मृति में आओ कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी में रहती हूं, मैं एक ज्योति बिंदु हूं, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, और इस संकल्प में स्थित होने का अभ्यास करो। सिर्फ संकल्प नहीं करो, क्योंकि संकल्प ही बहाव है। तो श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प, अगर एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास हो जाए, तो जितना व्यर्थ संकल्पों का बहाव है उसको हम रोक सकते हैं, और उससे जितनी एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता से स्थिरता आती है, स्थिर हो जाता है। जैसे पानी जहां बह रहा है, अगर उसको हम इकट्ठा कर लें, एकाग्र कर लें, और उस एकाग्र करके उसको हिलने न दें, एकाग्र रखें, तो वो स्थिर हो जाए। स्थिर माना उसकी जो भी मैल है, जो भी ऊपर कीचड़ा है, हिलने डुलने से ऊपर आता है, वो धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। उसका सारा कीचड़ नीचे बैठ जाएगा। क्या होगा उससे? एकाग्रता से स्थिरता आई और स्थिरता से स्वच्छता आ जाएगी और स्वच्छता आने से स्पष्टता आएगी, स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जैसे कई मंदिरों के आगे आप सबने देखा होगा बहुत बड़े बड़े खड्डे में पानी रखते हैं, जल होता है, और उस जल को जब स्थिर होता है, एकाग्र होता है तो 20 फुट 50 फुट अगर गहरा भी हो, उसमें आप 10 पैसे का सिक्का भी डाल दो तो नीचे तक बहुत स्पष्ट बड़ा बड़ा दिखाई देता है, ऐसे लगता है कि वो ऊपर ही दिखाई दे रहा है 50 फुट गहरा। लेकिन इतनी स्वच्छता है, इतनी सफाई है पानी में, उस कैसे आई वो? एकाग्रता, और एकाग्रता के बाद स्थिर हुआ, स्थिरता से स्वच्छता आ गई और स्वच्छता से स्पष्टता आ गई। ऐसा है ना, स्पष्ट दिखाई देता है क्या है उसके अंदर, कौन सी चीज पड़ी हुई है, हम ऊपर से देख सकते हैं। तो बाबा भी कहता है कि मेरे अंदर कोई भी अगर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, हम बदलना तो चाहते हैं। बाबा कहता है, हम कहते हैं हाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने अंदर नहीं जाते, दूसरे पर जाते कि इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। ये बाबा ने जो मुरली चलाई ना, ये उसके लिए बहुत अच्छी है, फलाने के लिए अच्छी, बहुत फौरन नजर जाएगी ये जो बाबा ने बात कही ना, उस व्यक्ति के लिए, उस बहन के लिए, उस भाई के लिए बहुत अच्छी है। और अपने अंदर जो पड़ा हुआ कीचड़ा वो दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि बुद्धि में हलचल है, दूसरों को देखने की आंख है तेज। अब अपने अंदर की कमियां निकल जाएं, हमारे संस्कार चेंज हो जाएं, हमारी विचारधाराएं परिवर्तित हो जाएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार अपने संकल्पों की हलचल को एकाग्र करना पड़ेगा, व्यर्थ को ब्रेक देना पड़ेगा। जो व्यर्थ संकल्प आते हैं, मान लो कोई गलती भी हो गई, मान लो होनी नहीं चाहिए, मान लो फिर भी कोई संस्कार के कारण, कोई संग दोष के कारण, कोई परिस्थिति के कारण, कोई मजबूरी के कारण कुछ हो भी गया, तो भी बाबा कहता है बच्चे उसको बार बार रिवाइज नहीं करो, बार बार रिपीट नहीं करो, बार बार सोचो नहीं, सोचना स्वरूप नहीं बनो, उसको भी ब्रेक लगाओ, फुल स्टॉप, बीतती सो बीतती, और आगे के लिए मुझसे नहीं होगी उसके लिए दिल से महसूसता और दृढ़ता कि अब नहीं होगी, गलती हो गई, पर्वत स्थिति थी। रिवाइज करने से क्या होता, दाग पर दाग लगते जाते हैं, भूल हुई और उसको चिंतन में ले आए, वर्णन में ले आए, दूसरों को सुना दिया, किसी की कमियों का वर्णन और अपनी कमियों का वर्णन जो बार बार करता है, वो खुद भी कमजोर रह जाता है और वायुमंडल को भी कमजोर बना देता है। वायुमंडल अगर शक्तिशाली नहीं बन रहा है किसी स्थान का, किसी सेवा स्थान का, तो उसका मूल कारण है वहां पर व्यर्थ की ग्लानि अथवा व्यर्थ की चर्चा या व्यर्थ का चिंतन कुछ आत्माएं करती हैं, चाहे दो चार ही करती हूं। वायुमंडल दो तीन बातों से ही बनता है, या व्यर्थ सोचने से बनता है, जैसी वृत्तियां वैसा वायुमंडल, व्यर्थ वाणी जहां चलती है, जहां व्यर्थ वार्तालाप होती है, वहां पर व्यर्थ या साधारण या कमजोर वातावरण बन जाता है। जहां पर ऐसी बातों की चर्चा है या देखना सुनना बैठना बातें करना कोई भी स्थूल है, वहां पर माया की प्रवेशता होती है। अगर किसी भी स्थान पर कोई विघ्न है, कोई इविल स्पिरिट का वार है, अटैक है, कोई भटकती हुई आत्माएं आपके पास आ रही हैं, आप अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो इस स्थान पर एक दृढ़ संकल्प लो, संकल्प करो आज के दिन कि उस स्थान के वायुमंडल में कोई भी प्रकार की साधारण चर्चा नहीं करेंगे, कोई भी व्यर्थ बात नहीं करेंगे, कोई भी नेगेटिव बात वहां नहीं होगी, वो स्थान निर्विघ्न बन जाएगा। क्योंकि चर्चा से ही वायुमंडल बना, वृत्तियों से बना, संकल्प से बना, आपस में लेन देन करने से बना। और अगर उस जगह पर तपस्या का वायुमंडल, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जितना हो सके मन और मुख का मौन रखो। दृढ़ता से संकल्प लो कि कुछ भी हो अधिक वार्तालाप में नहीं आना है। जो बोल सार युक्त नहीं है, जो बोल लाभदायक नहीं है, वो विस्तार के बोल नहीं बोलने हैं। इसलिए बाबा ने इस बार अंडरलाइन कराई है एक बात मुरली के अंदर, जिन्होंने ध्यान दिया होगा, विस्तार में नहीं जाओ, शॉर्ट करो। व्यर्थ का विस्तार करने से वो बात बढ़ती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा होता है ऐसा होता है। कोई भी स्थान अगर इस चर्चा में रहता है, वहां पर हर प्रकार की रुकावटें और हर प्रकार के विघ्न आते हैं, समस्या पर समस्या, एक जाएगी दूसरी आ जाएगी। इसलिए जितने हम सभी निमित्त आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं हैं, हम सबका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी जवाबदारी बाबा ने दी है। उस स्थान पर जहां हम निवास करते हैं, चाहे अपने घर में आप रहते हो, अकेले रहते हो, दस के बीच में रहते हो, चाहे आप सेवा केंद्र पर रहते हो, उस स्थान के वायुमंडल को अपनी श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्पों की शक्ति से चार्ज करो, शक्तिशाली बनाओ, और उसमें वहां पर केवल ज्ञान की चर्चा हो, केवल बहुत संक्षिप्त रूप में वार्तालाप हो, एक भी व्यर्थ बोलचाल वहां पर नहीं होना चाहिए, साधारण भी न हो, स्वार्थ वाला भी न हो। आज जो बाबा ने पुण्य और दान की एक बहुत गहन गति सुनाई है मुरली के अंदर, दान करने वाली आत्माओं का सो करने की एक इच्छा होती, कोई देखे तो मैंने इतना दिया। पुण्य करने वाली आत्माएं सो नहीं करती, और बाबा हम सभी आत्माओं को उस नजर से देखता है कि ये सब मेरी पुण्य आत्माएं, मेरे बच्चे पुण्य महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं हैं। इस स्मृति में रहो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, कोई भी सेवा सिद्ध करने की, बताने की, स्पष्ट दूसरों को नजरों में लाने की जरूरत नहीं है। बाबा देखने वाला है, बाबा जानता है कि बच्चे के दिल में क्या है, किस सच्चाई से, किस ईमानदारी से, किस लगन से इसने सेवा की है। अगर वो सेवा को हमने सुना दिया, बता दिया, स्पष्ट कर दिया, और हम सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं तन से सेवा करता हूं, मन से सेवा करता हूं, धन से सेवा करता हूं, तो बाबा कहता है उसके सेवा का खाता नील हो जाता है। किया उसने मेहनत, किया सेवा, इतना धन लगाया, इतना तन से किया, लेकिन वर्णन कर दिया, चिंतन में आ गया, उसके मान और शान की इच्छा रखी, अपना फोटो छप जाए उसकी इच्छा रखी, तो बाबा कहता उसकी सेवा का खाता समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त बच्चे बाबा को चाहिए। कोई भी प्रकार से हम उसका वर्णन और चिंतन और विस्तार न करें। हाँ, सरकार को जहां पर हम उसको बता सकते हैं, जहां पर हम उससे लाभ ले सकते हैं, जहां कुछ फायदा होने वाला वहां हम बताते हैं, लेकिन मेरा शो हो, मेरा नाम हो, मेरी बातें आए सामने, सब पता चले सबको, एक भावना सूक्ष्म अगर स्वार्थ की है तो पुण्य का खाता नहीं बनता। दान का बन सकता है, लेकिन पुण्य आत्मा बन जाऊं और पुण्य आत्मा बनकर दुआएं प्राप्त करूं गुप्त रीति से, प्रभु की दुआएं, भगवान की दुआएं मिलें, आपस में आत्माएं हमें, ब्राह्मण आत्माएं दुआएं दें, निमित्त आत्माएं दुआएं दें, दुआओं का स्टॉक हमारा फुल हो, उसके लिए हम सबको गुप्त पुरुषार्थी बनना है। और जहां तक हो सकता है, बाबा कहता है, तीन बातें सुनाता है, इस दुनिया में रहते हुए सदा समझो ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस में कैसे रहते हैं, सब कुछ समेटा हुआ रहता है, ऐसा नहीं बिखार दिया जाता, फैला दिया जाता। घर में तो सब चीजें फैला दी जाती हैं, पड़ी रहती जहां आई वहां। कई कई घरों में जाओ तो लगता सचमुच गृहस्थी है, गृहस्थी। गृहस्थी कैसे होते हैं, सब चीजें जो देखो वहां पड़ी हो, व्यवस्थित नहीं दिखाई देती। वैसे बाबा ने अपने बच्चों को कहा तुम गृहस्थी नहीं हो, गृहस्थी तो नहीं हो ना सभी है, माताएं गृहस्थी हो क्या? गृहस्थी माना बंधन, गृहस्थी माना गंदगी, दृष्टि नहीं है, लेकिन हम सभी दृष्टि हैं। दृष्ट व्यवहार नहीं है, लेकिन ये सेवा के लिए व्यवहार है। अगर हम सभी गृहस्थी में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए इतने निवृत्त होकर के रहते हैं, तो हर बात व्यवस्थित स्वच्छ होनी चाहिए। जहां स्वच्छता है वहां प्रभुता है, वहां बाबा निवास करता है और वहां योग सहज लगता है। अगर गंदगी में बैठ करके योग करोगे, योग नहीं लगेगा। चाहे अंदर गंदगी है, विचारों में गंदगी है, चाहे स्थान की गंदगी है, इसलिए यहां पर आते ही लगता है कितने स्वच्छ वातावरण में आ गए, कितनी स्वच्छता है, कितनी सफाई है। ऐसे बाबा कहते, बच्चे जहां रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, उस स्थान के चारों ओर स्वच्छता का वायुमंडल बनाओ, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप ब्राह्मणों के निवास स्थान पर तो कोई भी प्रकार की अंदर और बाहर की अस्वच्छता नहीं चाहिए, नहीं तो अस्वच्छता में मच्छर पैदा ही होते हैं। जहां गंदगी है वहां स्थूल रूप में तो मच्छर ही काटेंगे, बीमारी फैलाएंगे, लेकिन अंदर जो व्यर्थ संकल्पों के मच्छर हैं वो बहुत परेशान करते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के मच्छर मुझे परेशान न करें अंदर ही अंदर, उसके लिए बहुत अटेंशन चाहिए, बहुत सफाई चाहिए अंदर बाहर की। और अंदर बाहर की सफाई के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे मन बुद्धि को सदा बिजी रखो, व्यस्त रखो। एक दुनिया को गेस्ट हाउस समझो, दूसरा कहीं पर भी कभी रेस्ट न लो। अगर रेस्ट लेंगे, आरामदायक आराम पसंद बन जाएंगे, क्या होगा, जो बहुत आराम पसंद होते हैं ना, वो बहुत सुस्त हो जाते हैं, बहुत बीमारियां उनको घेर लेती हैं। इसलिए बाबा कहता, बच्चे मन से, बुद्धि से, तन से भी रेस्ट नहीं लो, बिजी रहो। जितना मन बुद्धि अच्छी अच्छी सेवा में, चिंतन में, विचारों में बिजी है, बुद्धि को काम देना सीखो। मान लो आज आपके पास कोई ऐसा काम नहीं है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, कोई को ज्ञान सुनाना आता है, कोई भी कला है, कोई भी विशेषता है, बाबा का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, ब्राह्मण बच्चा जिसको बाबा कहता मेरा बच्चा, उसके अंदर ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो, ऐसा कोई, जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाओ, बिजी हो जाओ। स्थूल कर्म करने की विशेषता है, अच्छा भोजन बनाने की विशेषता है, ब्रह्मा भोजन बनाने की विशेषता है, बाबा कहता बिजी करो अपने आप को, बुद्धि को बिजी करो, ज्ञान चिंतन में बिजी करो, लिखना आता है अच्छे अच्छे लेख लिखो, फ्री नहीं रखो। जहां फ्री है वहां माया चांस लेती है, वहां व्यर्थ संकल्प अटैक करते हैं। तो जहां पर भी हो, बाबा कहता है, एक तो इस दुनिया को गेस्ट हाउस समझ के रहो, घर गृहस्थ में नहीं रह रहे हैं, लेकिन गेस्ट हाउस में है, आज है और कल अपने घर जाना है। घर तो ऊपर है ना, यहां तो नहीं है ना। अगर ये स्मृति अंदर से बन जाती है कि ये गेस्ट हाउस है और मुझ आत्मा को जाना है, तो बुद्धि कहीं पर भी फंसती नहीं है, बहुत साधन और सुविधाओं में लटकती नहीं है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, थोड़े समय के लिए जो जरूरी है, आवश्यक है, मिला, यूज किया और फिर न्यारे हो गए, तब कहेंगे गेस्ट हाउस में हम रहते हैं, दुनिया ही गेस्ट हाउस है। और दूसरा, बाबा कहता है, बच्चे अपनी कमजोरियों को चेक करके गेट आउट करो, निकालो बाहर। जो भी अंदर सूक्ष्म में कमियां हैं वो अंदर पाल करके नहीं रखो, क्या करूं, सब में है, सारा नहीं दे दो ऐसा। अगर मेरे अंदर है तो मैं इसको निकालने के लिए कुछ तपस्या करूं, कुछ जिद करूं बाबा के साथ, कभी बाबा से अच्छी अच्छी बातें करूं, ज्ञान योग की शक्ति जमा करूं, जो अच्छा संघ मिलता है अच्छे संघ में जाऊं, जहां से समर्थी शक्ति मिल सकती है उनके साथ जाऊं, बैठूं और शक्ति लेकर के उस कमियों को समाप्त करूं। इसलिए अगर कोई कमी कमजोरी यहां पर आपको लगती हो, ये संस्कार बहुत समय से मेरा चलता आ रहा है, बाबा कहता बच्चे नहीं होना चाहिए, लेकिन वही संस्कार मुझे परेशान करता है, मेरा योग लगने नहीं देता है, मेरी नींद फिटा देता है, ये संस्कार मुझे तंग करता है, चाहे चिड़चिड़ेपन का संस्कार है, चाहे जेलसी ईर्ष्या का संस्कार है, गुस्से का संस्कार है, बदला लेने का संस्कार है, वैर विरोध का संस्कार, बहुत सारे नेगेटिव संस्कार जो बाबा के पराए हैं, माया के हैं, रावण के हैं, उन संस्कारों को बहुत अंदर जाकर के स्वच्छ मन से देखो अंदर, और वो देख करके उसको कड़ी नजर से गेट आउट करो, बाहर हो जाओ, तुम मुझे नहीं चाहिए ये। बाबा तो मुझे क्या बना रहा है, देवता बना रहा है, देवता ही संस्कार इमर्ज कर लो, कैच करो उन संस्कारों को, क्या मेरे संस्कार थे, आदि संस्कार मेरे क्या थे और अनादि संस्कार क्या थे। मध्यकाल के संस्कार तो माया के संस्कार है, विकारी संस्कार है, लेकिन मेरे जो अनादि संस्कार है वो बहुत पवित्र और शुद्ध संस्कार है। और आदि में जब मैं आत्मा आई तो कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी थी ही नहीं, व्यर्थ था ही नहीं, इतनी मैं दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा और शुद्ध आत्मा। तो उन संस्कारों को इमर्ज करके, उनको स्मृति मिला करके, इस समय उन दिव्यता के संस्कारों को इमर्ज करो। यहां पर कोई पुराना संस्कार इमर्ज हो रहा हो तो उसको इमर्ज कर देना, कभी गुस्सा आ जाए, कभी कोई चोरी का संस्कार हो, कोई छिपाने का संस्कार हो, कोई जोर से बोलने का संस्कार हो, होते तो कोई ना कोई है पुराने संस्कार, उन संस्कारों को एक चेक करके और बाबा के घर में आज समर्पित कर दो। बाबा की कुटिया में, बाबा के कमरे में जा करके लिख करके डाल के आ जाओ, बाबा ये तेरा है ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा संस्कार जो है वो बाबा को दे करके, और बाबा से शक्ति लो अच्छी तरह से, बाबा की किरणों को अनुभव करो और उन किरणों के आधार से अपनी कमियों को सदा के लिए विदाई दे दो। तो गेस्ट हाउस समझना, गेट आउट करना, और कभी भी रेस्ट नहीं करना, खूब अच्छी तरह से जितनी सेवा मिले मनसा से करो, वाचा से करो, संबंध संपर्क से करो, और कुछ नहीं अगर सेवा का चांस मिलता है तो ऐसी चलन हो, ऐसी चेहरा हो, ऐसा मुस्कुराता हुआ फेस हो जो उससे दूसरों को प्रेरणा मिले कि हाँ इसको कुछ प्राप्ति हुई है। टेंशन लेकर के चेहरे पर नहीं घूमना, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये क्यों उदास है, क्यों ऐसा निराश है, इसको लोग पूछने लगे भाई कुछ दुख तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा चेहरा होगा तो सेवा क्या करेंगे। तो बाबा कहता जो मेरे सेवाधारी बच्चे हैं वो सेवा में सदा भी जी रहते हैं, उनके लिए सब प्रकार की सेवा खुली हुई है, ऐसे नहीं मेरे पास तो सेवा ही नहीं मैं क्या करूं, कोई कोई कह देते ना मेरे पास सेवा ही नहीं है। बाबा कहता सेवा तो मैंने इतनी दी है, विश्व परिवर्तन की सेवा दी है, एक सेवा थोड़ी है, प्रकृति के तत्वों को परिवर्तन करना, इतने बड़े विश्व को परिवर्तन करना है, सारे संसार की सेवा आपके ऊपर है, आप बच्चे ही इसको कर सकते हो, इसलिए मनसा से, शक्तिशाली मनसा से सेवा तो तभी होगी ना जब अच्छे शुद्ध संकल्प होंगे, शांत संकल्प होंगे, पवित्र संकल्प होंगे, तो हमारे अच्छे वाइब्रेशन अपने आप वायुमंडल को शुद्ध बनाएंगे, प्रकृति को पावन बनाएंगे। तो मनसा से और अच्छे बोल बोल करके, मधुर बोल बोल करके, कम बोल बोल करके, जितने कम बोल में काम चल सकता है चलाओ, यहां पर तो कम से कम ये प्रैक्टिस करना कि जितना कम से कम बोल सको, गिनती के बोल निकले, अगर कोई कहे कि एक घंटे में तुमने कितने बोल बोले तो आप बता सको हाँ 20 बोले, 15 बोले, 10 बोले, कितने बोले, या ऐसे ही बोलता रहा जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। तो अगर बोल पर हमारा कंट्रोल है, संकल्प पर कंट्रोल है, तो चलन और चेहरा अपने आप बाबा की सेवा करेगा, तो बहुत अच्छा सेवा का चांस है। और सेवा माना सुख देना और सुख लेना, ठीक है। तो आज जो बाबा ने कहा है कि बच्चे सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो, दुआओं का स्टॉक जमा करो, तो ये दुआओं का स्टॉक जमा करने का बहुत सुंदर अवसर है। जितनी सेवाएं कर सको अपने चलन से, चेहरे से, तन से, धन से, मन से, सब प्रकार का गोल्डन चांस बाबा ने दिया है, खूब अच्छा भाग्य बना करके जमा करके फिर अपने सेवा स्थान पर जाना। ओम शांति।